कल्पना कीजिए मानव इतिहास की पहली हत्या, एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। सामान्य तौर पर कोई भी सोचेगा कि ऐसे में सबसे कड़ी सजा मिलेगी, शायद तुरंत मौत की सजा या पूरा विनाश, लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है।
हाँ, और यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को, मतलब सिर्फ एक पुरानी घटना से निकालकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक और मानवीय अध्ययन में बदल देता है।
मतलब जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसे एक ऐसा सुरक्षा घेरा दिया जाता है, एक ऐसा निशान दिया जाता है ताकि कोई और उसे नुकसान ना पहुंचा सके। एक हत्यारे को बचाया जा रहा है, ऐसा क्यों?
बिल्कुल, हम अक्सर न्याय और दया को दो अलग अलग खानों में रखते हैं ना, लेकिन यहाँ वह दोनों एक ही जगह पर घटित हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति के साथ।
तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के नोट्स और जेनेसिस के अध्याय 4 और 5 के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईडन गार्डन के बाद असल में इंसानियत का हुआ क्या।
देखिए, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये समझना है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं के सामने घुटने टेक देता है तो उसका असर सदियों तक कैसे गूंजता है।
तो चलिए उस पहले विवाद की तरफ चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ, वो भेंट जो केन और एबेल ने दी थी। एक आम धारणा ये है कि एबेल ने जानवरों की बलि दी थी जो भगवान को पसंद आई।
हाँ, और केन ने केवल सब्जियां या फसल चढ़ाई, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया।
बिल्कुल, तो क्या भगवान को सच में सिर्फ रक्त बलिदान ही पसंद था और फसल नहीं?
ये धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन जो हमारी स्रोत सामग्री है वो इसे पूरी तरह से खारिज करती है।
अच्छा,
हाँ, यहाँ मुद्दा ये था ही नहीं कि भेंट में लाया क्या गया था। मूल हिब्रू पाठ में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है मिंचा।
मिंचा, इसका क्या मतलब होता है?
दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर लेविटिकस में जहाँ सारे नियम कानून लिखे गए हैं, इसी मिंचा शब्द का उपयोग अनाज और फसल की भेंट के लिए किया गया है।
अरे वाह, मतलब सिद्धांतिक रूप से केन की फसल की भेंट पूरी तरह से वैध थी।
बिल्कुल वैध थी, बात सामग्री की थी ही नहीं, बात नियत और प्राथमिकता की थी। अगर आप एबेल की भेंट को देखें तो पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि वो अपने झुंड का पहला बच्चा और उसका सबसे अच्छा हिस्सा लेकर आया, यानी वसा वाला हिस्सा।
प्राचीन समाजों में पशुपालन करने वालों के लिए पहला बच्चा देना तो एक बहुत बड़ा जोखिम होता होगा ना?
बहुत बड़ा जोखिम, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे और बच्चे पैदा होंगे या नहीं, या वे जीवित बचेंगे भी या नहीं।
तो पहला बच्चा और सबसे अच्छा हिस्सा देना ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास का प्रतीक था।
सही कहा आपने, यह ऐसा था जैसे आप अपनी पूरी सुरक्षा ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हो। दूसरी ओर केन के बारे में पाठ बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग करता है।
वो क्या कहता है?
वो कहता है कि केन जमीन के फलों में से बस कुछ फल ले आया। इसमें न तो पहले फल का जिक्र है और न ही सबसे अच्छे का।
मतलब ये एक तरह से बस औपचारिकता पूरी करने जैसा था, बस नियम निभाना है, इसलिए कुछ भी उठा लाए।
हाँ, ये न्यूनतम प्रयास था। ये उस मानसिकता को दर्शाता है जहां आप ईश्वर को अपने जीवन का बचा खुचा हिस्सा देते हैं, न कि सबसे पहला और बेहतरीन हिस्सा।
ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा उपहार दे जो उसने बहुत सोच समझकर अपनी क्षमता से बढ़कर मेरे लिए चुना हो तो मुझे उसकी कीमत महसूस होगी।
बिल्कुल,
लेकिन अगर कोई बस अपने घर में पड़ा कोई पुराना सामान सिर्फ इसलिए दे दे क्योंकि उसे देना है तो नियत साफ दिख जाती है।
एकदम सही, एबेल की भेंट उसके गहरे सम्मान को दिखाती है जबकि केन की भेंट केवल एक रस्मदायगी थी।
लेकिन मुझे जिस बात पर सबसे ज्यादा हैरानी होती है वो ये है कि जब केन की भेंट अस्वीकार हुई तो उसका रिएक्शन क्या था? उसने ये नहीं पूछा कि मुझसे क्या गलती हुई।
इसके बजाय वो आग बबूला हो गया। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा और डरावना पहलू है। जब हमारी कोई कमी उजागर होती है तो उसे स्वीकार करने के बजाय ईर्ष्या और क्रोध का सहारा लेना बहुत आम है।
केन का चेहरा उतर गया था।
हाँ, वो गहरे अवसाद और क्रोध में था, और यहीं पर ईश्वर उसे एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि पाप दरवाजे पर दुबका बैठा है, वो तुम पर हावी होना चाहता है।
बाप रे, मतलब पाप की तुलना एक जंगली जानवर से की गई है जो शिकार के लिए घात लगाए बैठा है।
बिल्कुल, और ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें उस पर नियंत्रण पाना होगा।
यहाँ एक सवाल उठता है, जब ईश्वर कहते हैं कि पाप उस पर हावी होना चाहता है तो क्या इसका मतलब यह है कि केन की जो स्वाभाविक इच्छाएं थीं, जैसे कि वो चाहता था कि उसकी भेंट भी स्वीकार हो, क्या वे इच्छाएं ही मूल रूप से बुरी थीं?
देखिए, नहीं, इच्छाएं अपने आप में बुरी नहीं होती। मान्यता पाना, सम्मान की चाह रखना या सफल होना, ये सभी स्वाभाविक और ईश्वर द्वारा दी गई इच्छाएं हैं।
तो फिर समस्या कहाँ शुरू होती है?
समस्या तब शुरू होती है जब इंसान उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते चुनता है। डॉक्टर मैथ्यूज के व्याख्यान में मानव इच्छाओं को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक रूपक का इस्तेमाल किया गया है, एक पिज्जा कटर का।
पिज्जा कटर? रुकिए, जेनेसिस और प्राचीन धर्माविज्ञान की चर्चा में पिज्जा कटर कहाँ से आ गया?
हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत सटीक है। सोचिए, एक पिज्जा कटर पिज्जा काटने के लिए बहुत ही शानदार औजार है। इसे विशेष रूप से उसी काम के लिए डिजाइन किया गया है।
हाँ, वो तो है।
लेकिन अगर आप उस पिज्जा कटर को लेकर अपने बाथरूम की टाइल्स काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा?
जाहिर है, पिज्जा कटर पूरी तरह से टूट जाएगा और टाइल्स भी खराब हो जाएंगी। वो उस काम के लिए बना ही नहीं है।
ठीक यही बात हमारी इच्छाओं पर लागू होती है। हमारी इच्छाएं भोजन की, रिश्ते की, सफलता की पिज्जा कटर की तरह हैं।
जब हम उनका उपयोग उनके सही उद्देश्य के लिए करते हैं तो वे बहुत अच्छी होती हैं।
जैसे ईश्वर और समाज के भले के लिए। लेकिन जब हम उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करने लगते हैं तो वे विनाशकारी हो जाती हैं।
सो केन के सम्मान पाने की इच्छा गलत नहीं थी, लेकिन उसने उस इच्छा के पीछे पड़कर जिस ईर्ष्या को जन्म दिया वो टाइल्स काटने की कोशिश करने जैसा था।
एकदम सही। उसने न केवल खुद को बर्बाद किया बल्कि अपने भाई की जान भी ले ली।
और ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था ना। श्रोत स्पष्ट करता है कि यह एक सोची समझी हत्या थी। केन ने पहले एबल को मैदान में चलने के लिए कहा, उसे अकेला किया और फिर मार डाला।
हाँ, ये केवल एक भाई की हत्या नहीं थी, ये एक तरह से उस पूरी व्यवस्था पर हमला था जिसे ईश्वर ने बनाया था।
मतलब समाज के मूल ढांचे पर हमला।
बिल्कुल। देखिए, जब ईश्वर केन से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई एबल कहाँ है, तो केन क्या जवाब देता है? वो कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ?
अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कठोर और रूखा जवाब है।
प्राचीन समाजों में परिवार और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती थी। इसे एक तरह का पारिवारिक अनुबंध माना जाता था।
केन का ये जवाब सिर्फ झूठ नहीं है,
ये समाज के उस मूल ढांचे को नकारना है जहाँ हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं।
हाँ, और डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स बताते हैं कि ये सीधे तौर पर ईश्वर की छवि पर भी हमला था।
क्योंकि हर इंसान उसी छवि में बना है। जब आप एक इंसान को मारते हैं तो आप असल में उस छवि का अपमान कर रहे होते हैं।
बिल्कुल।
यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प हो जाती है वो है हत्या के बाद की सजा। कीन को जमीन से शापित किया जाता है। वो खेती करने वाला इंसान था और अब जमीन उसके लिए उपज नहीं देगी।
हाँ, और इसके साथ ही उसे पूर्व की ओर निर्वासित कर दिया जाता है।
पूर्व की ओर? ये सिर्फ एक दिशा का नाम तो नहीं लग रहा है। प्राचीन ग्रंथों में दिशाओं का भी अपना एक मनोविज्ञान होता है ना?
हाँ, इसे भूगोल का धर्म विज्ञान कहा जाता है। जेनेसिस में पूर्व की ओर जाना बार बार ईश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह से दूर जाने का प्रतीक बनकर उभरता है। ईडन गार्डन से निकाला गया था तब भी वे पूर्व की ओर ही गए थे।
बिल्कुल। और बाद में जब इसराइल का तंबू या मंदिर बनाया गया तो उसमें प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व की ओर होता था।
मतलब ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको पश्चिम की ओर आना होता था और दूर जाने के लिए पूर्व की ओर।
सही कहा। केन का पूर्व की ओर जाना उसकी आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाने की स्थिति को दर्शाता है।
ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है जहाँ आपका परिवार न हो, जमीन आपकी दुश्मन बन चुकी हो और आप लगातार भटक रहे हो। केन खुद कहता है कि यह सजा बहुत भारी है और जो कोई उसे देखेगा वो उसे मार डालेगा।
और यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। ईश्वर इस हत्यारे को भीड़ के न्याय से बचाने के लिए एक निशान दे देते हैं।
मुझे यही बात समझ नहीं आती। एक तरफ आप उसे शाप दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसे ऐसा VIP सुरक्षा घेरा दे रहे हैं कि कोई उसे छू ना सके।
सतह पर यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही ईश्वर के न्याय और दया का संतुलन है। हमें उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। उस समय इंसान की उम्र बहुत लंबी होती थी और आबादी बढ़ रही थी।
हाँ, एडम और ईव के अन्य बच्चे और उनके वंशज मौजूद थे। केन को डर था कि एबेल की मौत का बदला लेने के लिए लोग उसे मार डालेंगे।
बिल्कुल। ईश्वर द्वारा दिया गया ये निशान उस आंख के बदले आंख वाले न्याय को रोकने का एक तरीका था।
मतलब ईश्वर नहीं चाहते थे कि बदला लेने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाए।
हाँ, ये न्याय के बीच अनुग्रह का एक असाधारण कृत्य था। ईश्वर यह स्थापित कर रहे थे कि दंड के बावजूद जीवन का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ये केन के लिए शायद पछतावा करने का एक मौका भी था।
तो सवाल ये उठता है कि केन ने उस मौके का, उस जीवन दान का किया क्या? वो पूर्व की ओर चला गया और यहीं से कहानी मानव इतिहास के दो बिल्कुल अलग रास्तों की तरफ मुड़ती है।
सही कहा।
दो अलग विचारधारा वाले साम्राज्यों का निर्माण। एक तरफ केन का वंश है और दूसरी तरफ सेठ का वंश।
अगर हम केन के वंश को देखें तो ये एक ऐसी सभ्यता की तरह दिखता है जो तकनीकी और भौतिक रूप से तो बहुत शक्तिशाली हो रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली है।
केन का वंश ये दिखाता है कि जब पाप पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो वो कैसे म्यूटेट होता है और पीढ़ियों के साथ और भी भयानक रूप ले लेता है।
केन के वंश में हमें लेमेक नाम का एक व्यक्ति मिलता है ना?
हाँ, वो पहला व्यक्ति था जिसने बहुविवाह की शुरुआत की। उसने एदाह और जिल्लाह नाम की दो पत्नियां रखी। ये समाज के उस मूल ढांचे को तोड़ने का एक और कदम था जो ईडन में स्थापित किया गया था।
और बात सिर्फ वहीं नहीं रुकी। लेमेक का परिवार ऐसा लगता है जैसे किसी आधुनिक औद्योगिक क्रांति का प्राचीन संस्करण हो।
बिल्कुल, उसका बेटा ट्यूबलकन तांबे और लोहे के औजार बना रहा है। वे धातु विज्ञान में माहिर हो रहे हैं। जाहिर है वे सिर्फ खेती के औजार नहीं बना रहे थे,
वे हथियार बना रहे थे।
हाँ, और उन हथियारों का असर लेमेक के व्यवहार में साफ दिखता है। स्रोत में लेमेक की एक छोटी सी कविता है जो प्राचीन साहित्य की सबसे डरावनी कविताओं में से एक है।
वो क्या कहता है?
वह अपनी पत्नियों के सामने शेख ही बगाड़ते हुए कहता है, मैंने एक युवक को मार डाला है क्योंकि उसने मुझे घायल किया था। सोचिए, एक मामूली सी चोट के बदले हत्या।
उफ, ये तो शक्ति का भयानक दुरुपयोग है। आपके पास तांबे और लोहे के हथियार हैं, इसलिए कोई आपको खरोंच भी मारे तो आप उसकी जान ले लेंगे।
और कविता का अंत और भी चौंकाने वाला है। लेमेक कहता है, अगर केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का बदला 77 गुना लिया जाएगा।
अरे, ये तो ईश्वर द्वारा केन को दिए गए उस सुरक्षा के निशान का पूरी तरह से मजाक उड़ाना हो गया।
बिल्कुल, ईश्वर ने केन को बचाने के लिए जो नियम बनाया था, लेमेक ने उस नियम को अपनी असीमित हिंसा और प्रतिशोध को सही ठहराने के लिए एक हथियार बना लिया।
ये सच में एक सभ्यता के पतन का चरम है। ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जहाँ जिसके पास सबसे अच्छे हथियार है वही न्याय तय कर रहा है।
77 गुना बदला लेना कोई न्याय नहीं है, ये विशुद्ध अहंकार है। लेकिन फिर स्रोत हमें इस अंधकार से निकालकर एक दूसरी रोशनी की तरफ ले जाता है।
हाँ, अध्याय 5 जो सेठ के वंश के बारे में है, ईव ने एबल की जगह सेथ को ईश्वर के अनुग्रह के रूप में देखा और यहाँ हमें बिल्कुल अलग ही माहौल देखने को मिलता है। यहाँ लोहे के हथियारों की कोई शेख ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं, सेठ के समय से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आता है। स्रोत के अनुसार उसी समय से लोगों ने यहवे का नाम पुकारना शुरू किया।
नाम पुकारने से यहाँ क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ भगवान का नाम लेने जैसा था?
नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे धर्म विज्ञान में नेम थियोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन दुनिया में किसी का नाम पुकारने का मतलब था उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करना,
उसके चरित्र को पहचानना और खुद को समर्पित करना।
हाँ, ये एक तरह से मानव इतिहास में औपचारिक आराधना और प्रार्थना की शुरुआत थी। काइन का वंश तकनीक और हथियारों से अपनी सुरक्षा कर रहा था, जबकि सेथ का वंश अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर की उपस्थिति पर निर्भर था।
यह एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ आपके पास वो समाज है जो अपनी ताकत और प्रतिशोध के नशे में चूर है और दूसरी तरफ वो समाज है जो ईश्वर को पुकारता है।
लेकिन जब हम अध्याय 5 में सेथ की वंशावली को पढ़ते हैं तो एक बात बहुत खटकती है।
वो लंबी लिस्ट ना, कि कौन कितने 100 साल जिया, लेकिन हर नाम के अंत में एक वाक्य बार बार हथौड़े की तरह बजता है, और फिर वो मर गया। ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा है?
वो वाक्य ईडन गार्डन के उस मूल शाप की एक गूंज है। ईश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे।
भले ही अध्याय 5 में लोग 800 या 900 साल जी रहे थे, लेकिन मृत्यु एक अटल सच्चाई बनी रही।
बिल्कुल, यह वाक्य याद दिलाता है कि पाप का अंतिम परिणाम मृत्यु है और कोई भी तकनीक या हथियार इंसान को इससे बचा नहीं सकता।
लेकिन इस पूरी वंशावली में एक बहुत ही खूबसूरत बात भी छिपी है ना?
हाँ, इस मृत्यु के चक्र के बावजूद जीवन खत्म नहीं हो रहा है। ईश्वर की छवि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में आगे बढ़ रही है।
एडम और ईव के पापी होने के बावजूद स्रोत स्पष्ट करता है कि उनके बच्चों में वो पवित्र छवि बनी हुई है
और इसी छवि के माध्यम से वो अनुग्रह आगे बढ़ता है जो अंततः नूह तक पहुंचता है।
सो, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो केन की उसे छोटी सी ईर्ष्या से लेकर लेमेक की भयंकर हिंसा और फिर सेठ के वंश की आराधना तक एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है।
हाँ, और डॉक्टर मैथ्यूज ने इस पैटर्न को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से समझाया है। ये 3 चरणों का एक चक्र है।
सबसे पहले आता है पाप।
बिल्कुल, जो इंसान की इच्छाओं के गलत दिशा में जाने से शुरू होता है, जैसे केन ने अपनी सम्मान की इच्छा को ईर्ष्या में बदल दिया।
दूसरा चरण है न्याय,
जो उस आप को सीमित करने या उस पर अंकुश लगाने का काम करता है, जैसे केन का पूर की ओर निर्वासन, ताकि उसकी हिंसा समाज को तुरंत नष्ट न कर दे।
और तीसरा
और सबसे महत्वपूर्ण है अनुग्रह। ईश्वर का न्याय कभी भी अंतिम शब्द नहीं होता। मानवता को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए ईश्वर हमेशा अनुग्रह का रास्ता खोलते हैं।
केन को मिला सुरक्षा का निशान इसका एक उदाहरण है, और बाद में सेठ का वंश इसी अनुग्रह का वाहक बनता है।
एकदम सही, यही अनुग्रह है जो आगे चलकर नूह के समय में, जब दुनिया पूरी तरह से लेमेक जैसी हिंसा से भर जाती है, मानवता को एक नई शुरुआत देता है।
यह पैटर्न सच में हर युग में प्रासंगिक लगता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ये साफ हो जाता है कि छोटे छोटे स्वार्थ और ईर्ष्या कैसे समय के साथ एक विशाल सामाजिक पतन में बदल जाते हैं।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी स्वाभाविक इच्छाओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम उन्हें सही दिशा में लगा रहे हैं, या हम उस पिज्जा कटर का उपयोग अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए कर रहे हैं?
हमारे द्वारा लिए गए छोटे से छोटे फैसले सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, उनका असर हमारे आसपास के पूरे समुदाय और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है।
बिल्कुल, लेमेक की इंसा रातों रात नहीं आई थी, वो केन के उस एक गलत फैसले का ही विकसित रूप थी।
इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। आज हमने देखा कि केन का भौगोलिक रूप से पूर्व की ओर जाना वास्तव में एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था।
हाँ, ये ईश्वर की उपस्थिति और अपने भाई के प्रति जिम्मेदारी से दूर जाने का एक मनोवैज्ञानिक सफर था।
तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के इस आधुनिक युग में, जहाँ हम तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, हम जाने अनजाने में अपने लिए ऐसे ही पूर्व का निर्माण कर रहे हैं?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या हमारे डिजिटल इको चेम्बर्स, जो हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमें उन स्थानों पर ले जा रहे हैं जो हमें हमारे साथी मनुष्यों से दूर कर रहे हैं?
बिल्कुल, ये आत्ममंथन का विषय है।
क्या आज भी जब समाज में किसी को मदद की जरूरत होती है, तो हम अपने दिमाग में कहीं ना कहीं यही कह रहे होते कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो उस हजारों साल पुरानी कहानी से निकलकर आज हमारे सामने एक आईना बनकर खड़ा हो जाता है।